उसके बाद फरमाया वल्लदीना आमनू वामिलु सालिहाती, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने सवाले अमल किए, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअनहारु खालिदीन फीहा अबदा। अब देखें वहां पे सौफा आया, यहाँ पे सा आया। सौफा और सा में दोनों का माना हमने अनकरीब लिखा, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। सौफा में थोड़ा सा टाइम ज्यादा है बाईद के लिए, और सा करीब के लिए। यानी उन्होंने इनकार किया तो फौरन अल्लाह ने पकड़ के उनको आग में नहीं डाल दिया, बल्कि उनको मोहलत दी, चांस दिए, जिंदगी में आजादी दिए रखी, उनको मौके दिए कि वो तौबा कर लें, लेकिन नहीं किया उन्होंने। ये अल्लाह ताला का रहमत इससे पता चलती है कि अल्लाह ताला वक्त देता है, चांसेस भी देता है, दिखाता है इंसान को। तो सौफा है, और ईमान लाने वालों के लिए और साले अमल करने वालों के लिए सनुदखिलुहुम, इधर मरेंगे उधर जन्नत के ठिकाने दिखा दिए जाएंगे। इंसान का दिल ठंडा हो जाए, मुतमईन हो जाए, पुरसकून हो जाए। यहां से जाता है तो एक कब्र के अंदर भी उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती, और कयामत के दिन भी जन्नतों में जल्दी दाखिल कर दिए जाएंगे। तो एक तरफ अजाब है, दूसरी तरफ जन्नत है। देखे लेकिन फिर भी ना अल्लाह की रहमत उसके अजाब से कहीं बड़ी है, इसलिए कि याद रखें जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हारु खालिदीना फीहा अबदा। अल्हम्दुलिल्लाह कि फरमाया वो हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। अच्छा अब आप देखें, जो जन्नत में चला गया ना कभी उससे नहीं निकलेगा, मगर हाँ जो जहन्नुम में चला गया तो अल्लाह ताला चाहे तो उसको निकाल देगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। कभी जन्नती को नहीं जहन्नुम में डाला जाएगा कि वो कभी अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, अब तुम जहन्नुम में भी जाके थोड़े दिन रहो, नहीं। मगर जहन्नमी ऐसे जरूर हैं जिनका हम हदीस में पढ़ते हैं कि उनको निकाला जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अच्छा ये थोड़ा सा पार्ट मिस कर दिया मैंने, इन अल्लाह कैन अजीजन हकीमा, बेशक अल्लाह जबरदस्त भी है, गलबे वाला है, कहर वाला है और हिकमत वाला है। कोई ये ना समझे अल्लाह से कहीं भाग सकता है, वो गलबे वाला है, कुदरत वाला है और हिकमत वाला है। कोई ये ना समझे फिर क्या हो गया था, अगर इन्होंने इनकार कर दिया था तो कोई बात नहीं, फिर इनको इतना अजाब क्यों दिया जा रहा है। अल्लाह के पास हिकमत है, उसको पता है, वो अजीज है और पूरी अथॉरिटी उसके पास है। जब जबरदस्त हम कहते हैं ना, व्हाट डज दैट मीन, जबरदस्त है, अगर नहीं समझ आई तो समझने की जरूरत है, क्या मतलब हुआ। उसके पास फुल अथॉरिटी है, फुल ताकत है, कोई भी काम करने के लिए उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी अथॉरिटी होने के बावजूद उसके हर काम में हिकमत है, ऐसे अलर्ट टप काम नहीं है कि जज्बाती जैसे हम काम कर देते हैं, हमारे पास जरा सी पावर आ जाए फिर हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, किसी दिन गुस्सा आ जाता है तो फिर कुछ कर बैठते हैं, किसी दिन हमारा दिल खुश होता है तो फिर कुछ और तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे नहीं है। उसके सारे जो जितने भी उसके अफाल है वो सब हिकमत पे मबनी है। अल्लाह अकबर। अच्छा लहुम फीहा अज़वाज मुतहरा, उनके लिए वहां पे इन जन्नत में होंगे जोड़े पाक। अज़वाज का लफ्ज ना सिर्फ बीवियों के लिए नहीं होता, शौहर के लिए बीवी जौज है और बीवी के लिए शौहर जौज है, ठीक है। तो पाक जोड़े होंगे, यानी मर्दों को भी पाक बीवियां मिलेंगी और जो औरतें भी हैं उनके भी शौहर पाक होंगे, पाक जोड़े होंगे उनके साथ। अब ये क्या ये दुनिया वाले ही शौहर होंगे, या दुनिया में कोई औरत अपने शौहर से तो बड़ी तंग आ गई भी है, वो कहती है कि इस मुसीबत को वहां पे भी मैं झेलूंगी, और या किसी का शौहर मसलन है, बीबी आसिया है, उनका शौहर तो जन्नत के अंदर जाना ही नहीं है उसने, तो फिर वो क्या बगैर जोड़े की होंगी, नहीं, वहां पे अल्लाह ताला और जोड़े दे देगा, नए जोड़े बना देगा, ठीक है। क्या वो दुनिया वाले ही जोड़े होंगे या कोई और नए जोड़े होंगे, वो अल्लाह आलम, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी बिन ब्याही लड़कियां होती हैं, वो अब दुनिया से चली गई, उनकी शादियां ही नहीं हुई थी तो उनको कौन से शौहर मिलेंगे फिर? उनके तो दुनिया वाले शौहर तो होंगे ही नहीं वहां पे, वो थे ही नहीं। अल्लाह ताला उनके लिए कोई देगा उनको शौहर? ठीक है, तो लेकिन वो पाक जोड़े होंगे। वह नुदखिलुहुम, और हम दाखिल करेंगे उनको, ज़िल्लन ज़लीला, सायों में घने। कैसे साए वो होंगे? ठंडे साए, पुरसकून साए, लंबे साए। कि हदीस में आता है कि एक दरख्त वहां पे ऐसा है कि घोड़े पे कोई घुड़सवार है ना, घोड़े पे बैठ के घोड़ा दौड़ाता है, दौड़ाता है, दौड़ाता है, 100 साल तक घोड़ा दौड़ाता रहता है, लेकिन उस दरख्त का साया ही नहीं खत्म होगा। अब ये दुनिया में कुछ हम समझ सकते हैं? इतने घने, इतने गहरे और इतने लंबे साए होंगे। और अरबों को तो साए बहुत पसंद थे क्योंकि वहां पे बहुत शदीद गर्मी होती थी। तो साया, आप वैसे भी साया जो होता है ना, एक इंसान के लिए ठंडक और सुकून का एहसास देता है ना, तो ठंडक और सुकून के एहसास इसमें आते हैं। तो अब ये दो अंजाम दिखा दिए गए। हर इंसान का कोई एक ही अंजाम हो सकता है, ऐसे नहीं वहां पे कोई तीसरी भी जगह हो कि जहां पे वो जाके रेस्ट कर ले, वो नहीं है। सूरह आराफ में हम देखेंगे वो भी एक टेम्प्रेरी कोई एक चीज है, मगर अदरवाइज कोई तीसरा ठिकाना नहीं है, या तो ये है या मेरी है। तो फिर जो बोगे वो ही वैसा ही काटोगे। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको कि तुम अदा कर दो अमानतों को उनके अहल की तरफ। अमानतें तुम उनके अहल को दे दिया करो, उनके अहल तक पहुंचाओ अमानतों को। पहली तो बात है कि अमानत क्या चीज होती है, किस चीज को हम कहते हैं कि ये अमानत है? जो किसी के सपुर्द की जाए उस पे भरोसा करके, ठीक है, उसके किसी के हवाले की जाए उसके ऊपर भरोसा करके, उसको हम कहते हैं अमानत। अमानतें अल्लाह की तरफ से भी हमें मिली हुई है, ये जिस्म अमानत है अल्लाह की, औलाद अमानत है, ये घर बार माल अमानत है अल्लाह की, हमारा अपना थोड़ी है, हम लेके थोड़ी आए थे, ये तो अल्लाह ने दे दिया। ये आंखें अमानत हैं, ये कान अमानत हैं, ये सब अमानत है, ठीक है। दूसरी एक अमानतें होती हैं जो इंसानों की आपस के अंदर होती हैं, यानी इंसान किसी को अमानत कोई चीज रखवाता है, किसी के पास कोई अमानत देता है किसी को, किसी के सपुर्द कोई जिम्मेदारी भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, कोई बात भी हो सकती है जो अमानत के तौर पे आपके पास रखवाई जाए। देखो मेरी ये बात किसी को बताना नहीं, ये अमानत है, वो भी अमानत होती है। हम कहते हैं ना ये अमानत है आपके पास मेरी ये बात, वो राज होता है किसी का, पोजीशंस हैं, काबिलियतें हैं, ये सारी चीजें अमानतें हैं। फरमाया उनको उनके अहल के पास दो, उनके अहल के सपुर्द करो। क्या मतलब है? यानी जो इस लायक है कि वो उस अमानत को संभाल सके उसी को दिया करो। ऐसे ही अमानतें किसी के हवाले नहीं कर देनी चाहिए। अहल कौन होता है किसी अमानत का? जो अमानत को ले। अब ये बात आप लिख लें अपने पास, मतलब किसको हम कहेंगे ये अहल है इस अमानत का? जो अमानत को ले तो अमानत की हिफाजत करे पूरी तरह, पूरी अपनी सलाहियत लगा दे उस ईमानत अमानत को की हिफाजत में, और नंबर टू उस इमानत को अपने पर्सनल यूज में ना लेकर आए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अमानते इंसान इंसानों के पास रखवाते हैं, तो वो कैसी अमानते? मसलन ये जो सारी हमने बातें की कि कोई ओहदे हैं, कोई कोई चीज है, कोई कुछ है, उसको उसके अहल के पास दो। यानी जब आप अमानत किसी को दें तो उससे पहले देख लें कि वाकई ये इस अमानत को संभालने के काबिल भी है कि नहीं, इस अमानत को पूरी तरह से निभा सकता है कि नहीं। अगर वो नहीं उसके काबिल तो उसको वो अमानत ना दी जाए। क्या मतलब है? असल बात ये कि मेरिट की बेस पे लोगों को रखा जाए, काबिलियत देख के उसको अमानत दी जाए, क्योंकि ओहदे, जॉब्स, ये अमानते हैं, ठीक है, इनको उनके अहल के सुपुर्द करना जरूरी है। इस हुक्म पर अमल नहीं किया जाता तो आज हमारे माशरों का हाल देखें क्या है, वहां पे किसी को भी ओहदा किस बेस पे दिया जाता है, वो हमारा रिश्तेदार है, वो हमारे दोस्त अहबाब है, इसकी सिफारिश बहुत बड़ी आई है, रिश्वत बहुत बड़ी दे रहा है, और होता फिर क्या है, ना अहल लोगों के हाथों में जॉब्स आ जाती हैं, डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, हुकूमतें आ जाती हैं, और उसके बाद वो उनको फिर कैसे चलाते हैं और उनका कैसा बेड़ा गर्क करते हैं कि फिर उसके बाद हम ही शिकायत कर रहे थे, लोग देखो बड़ी करप्शन है, बड़ी है, वो कैसे नहीं हो, आपने ना अहलों को तो दे दी सारी चीजें, और हमारे यहाँ तो चलता ही ये है कि किसी ने बताया कि जॉब मिल ही नहीं सकती बगैर सिफारिश के और या रिश्वत के, इसके बगैर मिल ही नहीं सकती आपको जॉब, तो वहां पे अहल लोग बैठेंगे, वहां पे तो वही बैठेगा जिसकी जितनी बड़ी सिफारिश होगी या जितनी बड़ी रिश्वत होगी। कुरान कहता है कि आप अमानतें सिर्फ अहल को दो, वरना ये सारा निजाम बिगड़ जाएगा, वरना मुल्कों के माशरों के निजाम खराब हो जाते हैं, और ये अल्लाह ताला ने इसीलिए अहकामात दिए हैं ताकि हमारी, देखिए ये हमारी दुनिया की जिंदगी के लिए भी सकून और इत्मीनान के लिए है कि हमारी ये सिर्फ आखरत की बातें नहीं हो रही, अमानतों की तो आखरत में भी पूछ होनी है, लेकिन दुनिया की जिंदगी भी आपकी इन्हीं अहकामात पे अमल करने से पुरसकून होती है। कुरान के अहकामात आप सोचते हैं बस उससे हमारी आखरत सही हो जाएगी, नहीं, किसने कहा कि सिर्फ आखरत सही होगी, दुनिया भी इससे बनती है, जितने आपको मियां बीवी के ये पीछे सारे अहकामात विरासत के जितने आपने अभी तक पढ़े इनको आप इंप्लीमेंट करते हैं ना तो माशरे पुरसकून हो जाते हैं, ये क्योस खत्म हो जाएगी, ये दुश्मनियां जो आपस में ये खत्म हो जाएंगी, और आज देखें जब ना अहलों को जब चीजें दी जा रही हैं तो क्या हाल है, निजाम तो बिगड़ ही रहा है मगर ट्रस्ट भी खत्म हो गया, हर कोई अब दूसरे को देखता है वो सिफारिश चला रहा है तो मैं भी चलाऊंगा, तो अमानत इतनी बड़ी चीज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काफिर दारुन नदवा में बैठ के कत्ल की साजिश कर रहे हैं लेकिन उनकी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही पड़ी हुई हैं, यानी दुश्मनी जितनी मर्जी थी मगर उनको ये ट्रस्ट था कि ये बंदा अमानतदार है, ये हमारी अमानतों को जाया नहीं करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के ऊपर उनको फिर भी नहीं शक था कि ये कोई लेके भाग जाएगा, लेकिन आज यही किरदार खत्म हो गया, ये हमारे अंदर से अमानत उठ गई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ही खुतबा ऐसा होगा जिसमें आपने ये ना हुक्म दिया हो कि अमानतों का पास रखो, अमानतों के ख्याल रखो, अमानत की अल्लाह ने पूछ करनी है, जिसमें अमानत नहीं उसमें फरमाया ईमान ही नहीं है, कोई इंसान समझता है ना मैं बड़ा ईमान वाला हूँ, नमाजें रोजे बड़े हो रहे हैं, मस्जिदों के अंदर जा रहे हैं और अमानतों का ख्याल ही नहीं है, तो वो उसका ईमान नहीं है जिसमें अमानत नहीं है, कोई आपसे कोई मशवरा भी पूछता है ना तो उसको अब मैं कुछ ऐसा मशवरा बता देती हूँ, खुद ही घूमते फिरेंगे, कुछ लोग मजाक के अंदर ऐसे करते, कोई रास्ता भी पूछ लेना तो उल्टा रास्ता बता देंगे, फिर तो बाद में हंसेंगे कि देखो हमने क्या ऐसा इसको किया, खुद ही ढूंढता फिरे आप, तो मशवरा भी अमानत होती है, कोई आपसे कोई बात पूछ रहा है जिसका आपको इल्म है और आपने उसको गलत बात बता दी है ये भी अमानत थी, अमानत बात भी हो सकती है, अमानत कोई चीज भी हो सकती है, अब कोई चीज आपके पास मसलन रखवाता है वो कहता भाई मैं जा रहा हूँ वेकेशन पे, आपके पास ये मेरी गाड़ी है तो आपके घर पे खड़ी भी है, अब आप उसकी वो हालत करें उसको चला चला के उसका बेड़ा गर्क करके जब वो आए तो अपनी गाड़ी को पहचान ही ना सके, ये क्या होगी फिर, अमानत में खयानत की है ना, इस तरह से ये मैं आपको समझा रही हूँ कि अमानत के को पूरा करना क्या होता है कि इंसान उस चीज की हिफाजत करे जो अमानत उसको दी हुई, इसी तरह कोई किसी ऑफिस में उसको जॉब मिल गई है तो अमानत की हिफाजत क्या होगी कि अब वो उस जॉब को अपनी पूरी जान लगा के करे, ये उसकी हिफाजत है, और उस जॉब की जो चीजें हैं उनको अपने पर्सनल यूज में ना लेकर आए, ये है, अब हम कहें हम तो कोई ना जॉबें देते हैं ना कोई हम इस तरह करते हैं तो हमारी क्या, नहीं, जो आपके घर हैं वो उनके बारे में भी आपसे सवाल होगा ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर इंसान एक राई है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, आपकी कोई बड़ी बड़ी सल्तनत इतनी नहीं है, कोई जो बड़े बिजनेस नहीं है, कोई ऐसी जॉब्स पे आप हायरिंग नहीं करते, लेकिन आपकी रैयत आपकी ये बच्चे हैं आप, आपके पास ये अमानत है, आपके घर आपके पास अमानत है, और याद रखिए ये जो ओहदे है ना जॉब्स इनके बारे में पहली शर्त ये है कि जो बंदा ओहदे का लालची ना हो उसको दिए जाए, जो तड़प तड़प के भड़क भड़क के मांग ना रहा हो उसको दी जाए। हमारे यहाँ ये एक बड़ी वो हो चुकी है ये कि ओहदे मांगे जाते हैं, पोजीशंस मांगी जाती हैं, हालांकि जो इंसान वाकई समझता है ना ओहदे को एक अमानत, वो तो ये समझ सकता है कि अमानत का अल्लाह ने सवाल करना है, और अगर मैंने इसमें कोई कोताही की तो फिर मेरे से पूछ होगी, तो वो तो इससे बचता है। मेरे से पूछ होगी तुमने इसको सही तरीके से चलाया कि नहीं चलाया, तुमने अपने जाती इस्तेमाल में तो नहीं यूज कर लिया, तुमने क्या इसके अंदर कोई गलती तो नहीं की। क्यों हजरत उमर रोते थे पता है, 22 लाख मुरब्बा मील तक उनकी ये खिलाफत फैल चुकी थी इस्लामी हुकूमत, तो रोते थे, कहते थे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से उसका सवाल होगा, क्योंकि ये मेरी खिलाफत के अंडर हुआ। तो जो बंदा इसको एक जिम्मेदारी समझता है वो तो मांगता ही नहीं ओहदे, वो तो मांगता ही नहीं पोजीशंस। तो हमारे तो आज ये हाल हो गए कि हम तो ओहदे और उनकी और ये जो सियासत के अंदर भी है आप देखेंगे कि किस तरह से मांगा जाता है बाकायदा कि आप बस हमें बना दें, हम तो आपके गम में घुले चले जा रहे हैं, हमें तो रातों को नींद ही नहीं आती गरीबों के दर्द में। तो हम मैं ये जो बात कर रही थी ना कि हम ये सोचते हैं ना हमारे पास तो कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है कि हम उसमें अमानते किसी को दें, लेकिन ये जो आप वोट डालते हैं ना ये भी एक अमानत है, इसको भी उसके अहल के सपुर्द करना चाहिए, क्योंकि जो आगे आदमी बनता है कोई भी वजीर या जो भी, वो आपके वोट से बनता है, और ये अल्लाह का हुक्म है कि अहल को अमानत दो, ना अहल को ना दो। अब हम कहते हैं ना तो कोई है ही नहीं है तो हम क्या करें, नहीं ना अहल को ना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अमानते जाया होने लगे ना तो कयामत का इंतजार करो, यानी फिर आप समझ लेना कि कयामत कयामत करीब ही है। और इस आयत की शान नजूल में भी एक वाकया आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में शरीफ तशरीफ लाए, तो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर आपने तवाफ किया, और उसके बाद उस्मान बिन तलहा के पास चाबी होती थी, वो चाबी के यानी उनके सुपुर्द होती थी, उन कुंजी बरदार जिसको कहते हैं, तो वो थे काबा के, तो उनको बुलाया, उनसे चाबी मांगी, तो वो अपने घर गए। बाज जगह पर रिवायत में आता है कि उनकी माँ ने मना किया या जो भी था, मगर आप फाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने तो लानी थी। वो लेकर आए चाबी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी चाहिए, तो इतने में हजरत अब्बास ने कहा या रसूलल्लाह आप मुझे ये चाबी दे दें ताकि मेरे घराने में जमजम का पानी पिलाना भी और काबे की चाबी रखनी, ये दोनों चीजें आ जाए। और ये बहुत बड़ी बात थी ना, आप आज भी सोचें आज हमारे लिए कितनी बड़ी बात है कि जो हम कितना रश्क करते हैं उनके ऊपर जिनके पास काबे की चाबी होगी। तो ये बात जब सुनी हजरत उस्मान बिन तलहा ने तो अपना हाथ रोक लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मांगी, फिर यही वाकया हुआ, फिर तीसरी दफा मांगी, फिर यही वाकया हुआ, और फिर उस दफा तीसरी दफा हजरत उस्मान ने ये कह के दे दी कि अल्लाह की अमानत मैं आपको देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का दरवाजा खोल के अंदर गए, नमाज वगैरह वहां पे पढ़ी और सब किया, फिर आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा भी दिया। खुतबा पूरा करके आप बैठे ही थे कि हजरत अली आगे बढ़े और फरमाया कि आप चाबी मुझे दे दें ताकि बैतुल्ला की चौकीदारी का और हाजियों को जमजम पिलाने का जो मनसब है ये हमें ये दोनों काम हमारे फैमिली में आ जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नहीं दी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ में मशगूल हो गए, अभी चंद ही फेरे लगाए थे कि जिब्राईल अलैहि सलाम नाजिल हुए और यही आयत लेकर नाजिल हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर यही आयत तिलावत थी। तो इस पे हजरत उमर ने फरमाया था कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप इससे पहले तो हमने आपसे कभी ये आयत की तिलावत नहीं सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त पे हजरत उस्मान बिन तलहा को बुलाया और उनको चाबी दी और फरमाया आज का दिन वफा का दिन है, नेकी का और सलूक का दिन है, और फरमाया था उस वक्त ही कि तुमसे अब कोई जालिम ही होगा जो ये चाबी लेगा, अब ये चाबी यानी आप ही के खानदान में रहेगी हजरत उस्मान बिन तलहा के, और आज तक ये चाबी उन्हीं के खानदान में है। तो अमानत उनके सुपुर्द की गई जो अमानत के अहल थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तुम्हारे साथ अमानतदारी का बर्ताव करे उसकी अमानत अदा करो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे तो तुम क्या करो। हम कहते हैं ना वो कौन सा ऐसे करते हैं, वो कौन से अमानतदार हैं, तो हम भी फिर ये करेंगे। तो फरमाया नहीं, तुम उसे खयानत मत करना। क्या समझ आई है? होना तो ये चाहिए था जो तुम्हारे साथ अमानतदारी करे तुम भी उसके साथ अमानतदारी करो, जो खयानत करे तुम भी उससे खयानत करो। फरमाया जो तेरे साथ खयानत करे उससे खयानत मत कर। क्योंकि कयामत के दिन तो हर हकदार को उसका हक दिला दिया जाएगा। अमानत जो है ना वो देनी पड़ेगी, जो किसी की अमानत के अंदर कोई भी हमने अल्लाह ना करे कोई मसला किया हो, इवन यहाँ तक के शहीद जो होगा उसके भी गुनाह मिटा दिए जाते हैं, मगर अमानत नहीं मिटने लगी। कयामत के दिन उसको लाया जाएगा, कहा जाएगा अपनी अमानत अब अदा कर, वो जवाब देगा कि दुनिया तो अब है नहीं, मैं कहाँ से अदा करूँ। तो फिर उसको कहा जाएगा, फिर वो चीज़ जहन्नुम की तह में नजर आएगी और कहा जाएगा जाओ उसको लेकर आओ, और वो उसको अपने कंधे पे लाद के चलेगा, लेकिन वो गिर पड़ेगा, फिर लेने जाएगा, फिर गिर पड़ेगा, फिर इसी तरह अजाब में मुब्तला रहेगा। इब्ने कसीर में ये रिवायत है। तो अमानत छोटी बात नहीं होती, इसलिए बहुत ये भाग भाग करना जी मुझे ये ओहदा मिल जाए मुझे ये मिल जाए। पहली बात क्या बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अबू के अमानत जो मांगे उसको ना दो। अमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हम उसको नहीं देते अमानते जो मांग मांग के लेता है। आप इस चीज को छोड़ दें कि आज क्या हो रहा है, लेकिन इसका लालच करना कि मुझे दे दें मुझे ये कर, पहले सोचना चाहिए ये फिर मेरे लिए अमानत होगी, और मैं इसको सही से अगर ना कर सकी ना इस काम को तो अल्लाह के यहाँ पूछोगी, कोई पूछे या दुनिया में या ना पूछे, मगर यहाँ पे ना ओहदे अच्छे लगते हैं इंसान को, और टाइटल्स अच्छे लगते हैं, कोई नाम मिल जाना जी ये फलां है, ये जो प्रेसिडेंट है, ये सीईओ है, ये ट्रेजरर है, ये फलां है, तो ये इंसान को अच्छा लगता है। आगे बाद में वो उसको पूरा करे ना करे काम को, काम किधर फेंका हुआ खुद को परवाह नहीं है, लेने के बहुत शौक होते हैं लेकिन काम करने का नहीं दिल करता, फिर तो ये मामूली बात नहीं है। जिसके हवाले जो मामला किया जाए या जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी डाली जाए, एक तो वो उसका अहल होना चाहिए, नंबर टू क्या बात है, अब उसके ऊपर पड़ गई है ना जिम्मेदारी, अब उसको चाहिए कि वो अब इस जिम्मेदारी को पूरा करे। तो ये मुसलमानों को कहा जा रहा है असल में कि अल्लाह आपको हुक्म देता है कि आप अमानते सिर्फ अहल को दो, ना अहलों को ना दे दो। बात समझ आ रही है? और हमारे तो ना अहल ही भरे पड़े हैं, जब भी आज हमारे ये हाल है, जिन मुल्कों में बादशाहते हैं उनमें बादशाह देखें कौन से बैठे हैं जो ना अहल हैं। तो कहा गया मुसलमानों को नहीं दो ऐसे लोगों को अमानते, तो मुसलमानों को ये एक इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। तो अब आप बताएं फिर ये जो हम कहें कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कुरान के अंदर कि जी सिफारिश नहीं करनी किसी की, अगर किसी ने जॉब लेनी है तो सिफारिश नहीं कर सकते, अगर किसी ने जॉब लेनी है तो किसी को कहला नहीं सकते, और किसी की पोजीशन मैंने मार ली, तो ये इसमें कहाँ गलत लिखा हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है इन अल्लाह यामुरुकुम, हुक्म देता है तुमको, वैसे तो सारा ही कुरान अल्लाह का ही हुक्म है, लेकिन खास तौर पे जैसे कोई माँ कहे ना बच्चे को ये पानी ला दो, और दूसरा कहे मेरा हुक्म है तुमको कि तुम ले लेकर आओ, तो इसमें कितनी शिद्दत होगी बताएं। वह इदा हकम तुम बैन नासी अंतहकुमु बिल अदल, और जब तुम फैसला करो लोगों के दरमियान तो फैसला करो इंसाफ के साथ। अब देखें यहाँ पे वेस्ट में ना फैसले ज्यादातर कैसे किए जाते हैं, मसावात की बेसिस पे कि सब इक्वल है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि बाप और बच्चा इक्वल है, बस वो तुम्हारा बाप है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तुम्हारा कोई कुछ तुम्हें कुछ कहे तो तुम अब खड़े होके उसके ऊपर कॉल कर लो पुलिस। तो ये है कि वो बराबर है तुम्हारे। इस्लाम कहता है नहीं, हकदार को उसका हक देना ये अदल होता है। हकदार को हक देना अदल होता है। अदल का मतलब ये नहीं है मसावात बराबरी, अदल का मतलब ये है कि जिसका जितना हक बनता है उतना ही उसको दो। अगर बाप है तो उसका उसके मुताबिक हक है, अगर बच्चा है बेटा है तो वो उसका बेटा होने के नाते बाप से कम है हक, बाप का ज्यादा हक है उसके ऊपर। हम बराबर नहीं कर देंगे दोनों को, सारे इंसान बराबर हैं। इस्लाम तो कहता है सा, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। अदल होता है हक वाले को हक देना, नहीं सारे ही हमारे बच्चे हैं, हम तो सबको बराबर देंगे, जितनी हमारी विरासत है सबको बराबर बांटेंगे हम। अल्लाह ताला ने जितने भी अकामा दिए वो अदल से हैं, ये नहीं कि हर एक को बस एक ही तरह से हक दिया जाए, नहीं, जिसका जितना हक बनेगा। तो इससे यहां पता चलता है कि जब भी फैसला करना हो, अब हम कहीं जज तो है नहीं, जज को के लिए अपने मुताबिक है कि वो अदल करें, इस बेस के ऊपर किसी के साथ तरफदारी ना करें कि वो किस मजहब से है, किस रंग का या किस नस्ल का है। आपके सामने अगर दो लोग आते हैं, एक काफिर है बुत परस मुशरिक है और एक मुसलमान है, आप किसके हक में फैसला करेंगे? आप ये नहीं देखेंगे ओ ये तो मुसलमान है तो हमने तो इसके हक में करना है, चाहे जो मर्जी करो, है तो अल्लाह का नाम लेने वाला। नहीं, आपने कहना है कि अदल किया है, इंसाफ किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी का और एक मुनाफिक सो कॉल्ड तो मुसलमान ही था ना, उन दोनों का मुकदमा आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया क्योंकि उसके हक में ही बनता था। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए कि वो चूंकि मुसलमान है इसलिए हम उसके हक में, या कोई बहुत बड़े घर का है। अब वो औरत जिसने चोरी की थी वो बड़े खानदान की थी, तो सिफारिश क्या की गई कि इसका हाथ ना काटा जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात सुनी थी? फरमाया था फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उसका भी हाथ काटा जाता, इससे बढ़ के क्या इंसाफ होगा? तो हर एक अपने लिए सोचे कि मैंने इंसाफ के फैसले करने हैं। तो हकूमती लेवल पे तो जहां पे कोई जज बैठा हुआ है, कोई काजी बैठा हुआ है, वो तो करेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी घरों में बाज दफा फैसले करने होते हैं, आपके बच्चे ही आपके सामने आ जाते हैं और आपको फैसला करना पड़ता है। तो उस वक्त भी ये नहीं कि ये मेरा चहेता बच्चा है, ये मेरा कहना ज्यादा सुनता है। इंसाफ, कभी ऐसे हो सकता है कि एक तरफ आपकी माँ है एक तरफ आपकी भाभी है, इंसाफ। ये नहीं है कि भाई हमारी तो ये अम्मी है, आपकी बहन है और उसके आपके बहनोई है, तो अब भी क्या इंसाफ होगा? एक तरफ आपकी सास है एक तरफ आपके शौहर है, तब भी इंसाफ होगा? अल्लाह ताला ने आगे भी आप जाके पढ़ेंगे सूरह मायदा में कि कितनी ज्यादा अदल की बात की है, अदल के साथ किस्त इंसाफ के साथ फैसला किया जाए, चाहे वो कोई तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो, फिर भी इंसाफ। इन अल्लाह निअम्मा याइदुकुम बी, अब जिस माशरे में इंसाफ होगा, जिस माशरे में उनके अहल को अमानते दी जाएंगी, वो माशरा कितना प्यारा होगा ना, उसमें किसी को ये नहीं होगा मेरे साथ जुल्म हो जाएगा क्योंकि मैं गरीब हूं। या बाज दफा पता है क्या होता है कि चलो जी बेचारा गरीब आदमी है तो छोड़ो इसको, इस तरह है वो गरीब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसके उसको आप जो चीज उसकी नहीं भी बनती या जो इंसाफ की बात नहीं है वो भी इसलिए उसको कर दें क्योंकि बेचारा गरीब है। बाज दफा ऐसे भी होता है, बाज दफा गरीबों के साथ उस तरह से जुल्म होता है, लेकिन बाज दफा ये भी होता है कि चूंकि ये गरीब है तो छोड़ो जी इसने अगर चोरी भी कर ली, छोड़ो जी इसने अगर ये भी कर ली। इन अल्लाह निअम्मा याइज़ुकुम बिह का मतलब यही है कि अल्लाह तुम्हें कितनी अच्छी नसीहत करता है, ये कितनी अच्छी बात की तुम्हें नसीहत की जा रही है, क्योंकि इससे सारा माशरा पुरसकून हो जाता है। ये चीजें हैं जो तरक्की करने की हैं। हम सोचते हैं हमारी तरक्की इसके अंदर है कि बस हम लोगों की कॉपी कर लें, वो उन्होंने पता नहीं इसी तरह तरक्कियां की होंगी, छोटे कपड़े पहन के, जुबान के ऊपर गालियां दे के, कानों में बालियां पहन के, या नाच गा के, यही उनकी तरक्की के राज हैं, तो हम भी यही कर लेंगे, हम भी तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। नहीं, असल बात यह है कि जब तुम ये काम करो तो ये है तरक्की के काम के, तुम अमानते उनके अहल को दो और इंसाफ कायम करो माशरे में, छोटी से छोटी जगह और बड़े से बड़े महकमे में इंसाफ होना चाहिए, चाहे वो जॉब्स देने का हो, चाहे वो माँ बाप हैं जो घरों के अंदर कर रहे हैं बात किसी से, वो भी इंसाफ की करें। इन अल्लाह कान समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है और देखने वाला है। अल्लाह देख भी रहा, सुन भी रहा, जो जो भी कोई कर रहा है। बहुत सारी चीजें अंडर हैंड होती हैं, इंसान सोचता है किसी को क्या पता चला, अल्लाह को तो पता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। देखें, जब इंसान के अंदर ईमान होता है ना, ईमान, तो ईमान जितना स्ट्रोंग होता है अल्लाह और रसूल की इताअत उतनी ही ज्यादा इंसान बढ़ के करता है। ईमान आने के बाद, जो पक्का सच्चा ईमान होता है ना, उसके बाद इंसान समयाना व अताना कहता है, मैंने सुन लिया, मैंने मान लिया। वो ईमान आने के बाद फिर तरद्दुद नहीं रहता कि पता नहीं करना भी है मुझे कि नहीं करना, पता नहीं मैं सोचती हूँ, पता नहीं मैं मशवरा करती हूँ, पता नहीं सही भी है कि नहीं सही। नहीं, ईमान आने के बाद लाजमी है कि ईमान के फ्रूट्स में से क्या है, ये बीज अगर ईमान का डालेंगे ना, इसका फ्रूट क्या निकलेगा, इताअत अल्लाह रसूल की। हमारी जब इताअत में कमी होती है, वो इस वजह से कि ईमान में कमी है, ईमान में कहीं गड़बड़ है। सहाबी है, रसूल है, हम तो आज ये पूछते ही रह जाते हैं ना, आओ अच्छा कुरान में है कि हदीस है, अच्छा हदीस है तो फिर छोड़ें। जबकि सहाबी है, रसूल मस्जिद में एंटर हो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज कान में पड़ती है, बैठ जाओ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में किसी को कह रहे थे बैठ जाओ, अब उन्होंने ये नहीं पूछा मुझे बैठने को कह रहे हैं कि किसी और को कह रहे हैं, बैठूं कि ना बैठूं, अब यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं बैठने की, चलो अंदर जाके देखता हूँ। वो जहां थे वो वहीं बैठ गए, बाद में किसी ने पूछा आप क्यों यहाँ बैठे, पर हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, तय वो तो उनको कह रहे थे, लेकिन इनके कान में बस इतनी बात पड़ी बैठ जाओ, इतनी इताअत थी उनकी। वो इस तरह से नहीं हमारी तरह करते थे, हदीस है कि कुरान है, अच्छा फिर सोचेंगे तो फिर करेंगे, अच्छा फिर पता नहीं कितनी कितनी सोचों में पड़ जाते हैं कि जिंदगी भर सोच ही खत्म नहीं होती हमारी। तो इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। इसके बाद जो मुनकिरीन हदीस है, मैं आपको इसलिए हमेशा बताती रहती हूँ कि ये लोग बहुत एक्टिव हैं और मुसलमानों के अंदर ही मौजूद हैं, और खास तौर पे यूथ को बहुत टारगेट करते हैं, हदीस को नहीं मानते, कहते हम तो बस वो ही मानेंगे जो कुरान में है, या वो हदीस जो कुरान के मुताबिक हो रही हो वो मानेंगे। पता नहीं इन्होंने खुद ही हदीसें बना ली हैं, 200 साल बाद लिखी हैं, या बहुत कॉमन सुनेंगे। आज ऐसा वक्त नहीं है, आज तमाम हदीस के ऊपर इतनी स्टडी, इतनी रिसर्च हो चुकी है कि अगर किसी ने कोई हदीस घड़ी है तो मौजूआत, जो मौजू अहादीस हैं, वो अलग कर दी गई हैं। आज कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं हमें क्या पता, हमें क्या पता कि ये हदीस है तो पता नहीं खुद ही बनाई भी हो किसी ने। नहीं, ऐसा नहीं है, आज वो कोई किसी को पागल नहीं बना सकता। इसलिए याद रखें, हदीस पे अमल करना भी उसी तरह जरूरी है जैसे कुरान पे अमल करना। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत असल में अल्लाह ही की इताअत है। मई होती है रसूल है, फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में उसने अल्लाह की इताअत ही की। तो ये मुनकिरीन हदीस इतना प्रोपोगेंडा करते हैं ना, और जेनों में डालते हैं कि नहीं हदीस कोई चीज नहीं, तो फिर वो इस आयत पे कैसे अमल करेंगे, अती और रसूल पे कैसे अमल करेंगे, ये तो बताएं। और यहाँ पे एक तीसरी बात भी है, वह उलिल अमरी मिनकुम, और जो साहिब इख्तियार हैं तुम में से उनकी भी बात माननी है। लेकिन अती उ का लफ्ज आप देखें, अल्लाह के साथ है और रसूल के साथ है, उलिल अमर के साथ नहीं है। क्या इससे डिफरेंस पड़ता है? अगर होता शुरू में सिर्फ अती उल्लाह व रसूला व उलिल अमरी मिनकुम, तो अती सब के साथ होता, लेकिन यहां पे अती उ दो के साथ है और एक के साथ नहीं। इससे पता चलता है कि अती उ पहला और दूसरा, यानी अल्लाह की भी और रसूल की इताअत मुस्तकिल होगी, हमेशा होगी, हमेशा हर अफेयर में, और अनकंडीशनल होगी, जबकि उलिल अम्र की इताअत अनकंडीशनल नहीं होगी, उनकी कंडीशनल इताअत है, कंडीशनल मशरूत इताअत है, यानी शर्त है उसमें। शर्त क्या है? कि वो अल्लाह और रसूल की बात के अंदर रहते हुए कोई बात कह रहे हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे, समझ आई बात? तो उलेल अमर की तब माननी। अब उलेल अमर होते कौन है? अब मैंने आपको कहा साहिब इख्तियार, इसका मतलब क्या? साहिब इख्तियार मतलब है जो भी इंचार्ज है, जिनके पास भी अथॉरिटी है। कहाँ की अथॉरिटी? कहाँ की अथॉरिटी है? जिस जगह पे भी आप हैं, मसलन है आप किसी मुल्क में है, वहां पे अथॉरिटी किसकी है? जो भी हुकूमत है उसकी अथॉरिटी है, किसी गवर्नर की है। जब आपका कोई मामला किसी मजलिस का आता है, मिसाल के तौर पे आप किसी क्लास में आए हैं, वहां पे अथॉरिटी किसकी है? टीचर की है। आप किसी इदारे में गए हैं, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी अथॉरिटी है। आप किसी मजलिस में गए हैं, वहां पे जो मजलिस के मुंतजमीन है, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो उनके पास अथॉरिटी है। जिस जगह पे भी आप हैं ना, आप वहां की जो अथॉरिटी है, वहां जिसके पास भी इख्तियार है, जो भी साहिब इख्तियार है, उसकी बात को माने, मगर एज लॉन्ग एज वो अल्लाह रसूल की बात के अंदर ही बात कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं कर रहे हैं। अब इसकी क्यों ये यहाँ पे इतना जरूरी है? इसलिए ये इसी से सिस्टम चल सकता है। अगर हर बंदा खड़ा होके ये कहे मैं नहीं मानता, ये कौन होते हैं हमें हुक्म देने वाले? अपना काम करें, हमारी तो जो मर्जी होगी हम करेंगे, हम अल्लाह रसूल की मानते हैं, हमने इनकी नहीं माननी, क्योंकि ये हमारे पसंदीदा कैंडिडेट नहीं थे, क्योंकि वो फलां वो बन गया है, वजीर बन गया, जिस जिस मुझे नहीं पसंद था, मैंने तो नहीं इसको वोट दिया था, तो हमने नहीं माननी। नहीं, यहाँ पे कहा गया नहीं, आपको उनकी इताअत करनी है, दायरे में रहते हुए जहां पे अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक वो कोई बात कर रहे हैं। तो मसलन मिसाल के तौर पे, मसलन है एक जगह पे वो कहते हैं, एक हुकूमत ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन होगा। अब वो कहें हमने तो नहीं मानना, हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। अब वो लॉकडाउन के खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, वो वहां पे कहा जाए किसी जगह पे आपने मास्क पहन के आना है, आप कहें नहीं नहीं जी हम तो नहीं मास्क पहनते, हमें तो नहीं ये पसंद है। और कहां, कोई कुरान में लिखा हुआ ये, कोई हदीस है ये, हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है ना? अब हमें कई बातों की ना पता ही नहीं होता। अब यहाँ पे कहा गया जो भी अथॉरिटी है, मसलन है कि अमनो अमान की कोई बात है, आज आपको कह दिया जाए भाई फलां जगह पे अमनो अमान के लिए हमने ये चीजें की हैं, तो आपने इनको फॉलो करना है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके तहत ये काम किया गया। आप कहें हम तो पुलिस को मानते ही नहीं, हम तो पुलिस को कुछ समझते ही नहीं, ये तो सारे बेईमान है, हमने नहीं इनकी माननी, तो ये तो फिर नहीं सही। आपको कहा जाए आपने रात के बाद इतने बजे के बाद अपने घर से नहीं निकलना, अब आप बगावत पे उतरे में, तो ये कहीं पे भी, अब ये सिर्फ हुकूमतों की बात नहीं है, उलिल अमर कहीं के भी हैं, वहां के आपने बात को मानना है। जिसके पास भी अथॉरिटी, आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, वो कहते हैं आप लाइन में खड़े हो, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो नहीं लाइन बनाती, हमें तो ये पसंद ही नहीं है लाइन बनाना, हम तो नहीं बनाएंगे लाइन। ऐसा नहीं होता मुसलमान, वो उलिल अमर की भी इताअत करता है। अब उन्होंने अपने कोई रूल्स रखे होंगे अपने किसी, जाहिर अपने सिस्टम को चलाने के लिए। अब वो आपको एक जगह बिठाते हैं, आप यहाँ बैठे, आप कहते हैं यहाँ पे मुझे नहीं पसंद है बैठना, ये नहीं होता। बात समझ आ रही है ना कि कैसे उलिल अम्र की इताअत होगी? क्योंकि आपको अतीउल्लाह तो समझ आ गई, अतीउ रसूल भी समझ आ गई, कुरान को भी मानना है, हदीस को भी मानना है, इसकी इताअत करनी है, कुछ को भी वो नहीं कह सकते कि ये हदीस है तो इसको हम कुछ भी ना समझे, और उलिल अम्र की भी कैसे इताअत करनी है आपने वो भी समझ आनी चाहिए। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि जब कोई उलिल अम्र ऐसी बात का हुक्म दे दे कि जो अल्लाह रसूल की बात के खिलाफ है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपने एक बंदे को बना के भेजा अमीर, अब अमीर की भी हुक्म मानना जो है ना वो भी लाजमी होता है, जो जिसको अमीर बनाया जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है, आपकी कोई ग्रुप इंचार्ज है, आपकी कोई वो इंचार्ज है, वो आपके इन कामों की इंचार्ज है, ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी की वो इंचार्ज हो गए, लेकिन उस काम, उस स्पेशल डिपार्टमेंट, उस स्पेशल फील्ड में वो इंचार्ज है। अब वो कोई बात कह रहे हैं आप मानने को ही तैयार नहीं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे को भेजा अमीर बना के कुछ लोगों का, ठीक है? अब उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसको भेजा अमीर बना के, तो उसने आगे से सहाबा को ये मैसेज दिया, ये कहा कि लकड़ियां लेकर आओ और आग जलाओ। जब उन्होंने आग जला दी तो उसने कहा कि आग में कूद जाओ। अब सहाबा जो थे वो थोड़े वो हुए कि एक उनमें से बोले कि लोगों सुनो, आग से बचने के लिए ही तो हमने इस्लाम कबूल किया, अब हम क्या आग में कूद जाएं? तो वो थोड़े मुतजबजब हुए, उन्होंने कहा हम जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ यही करना है क्योंकि अमीर की इताअत होनी चाहिए, तो तुम्हें इसका कहना ही मानना है, तो फिर हम कूद पड़ेंगे। अच्छा, जब वो आए और उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया कि ऐसे वाकया हुआ है, तो आपने फरमाया अगर तुम आग में कूद पड़ते ना, तो हमेशा की आग में जलते रहते। सुनो, फरमा बरदारी सिर्फ मारूफ में है, ठीक है? यानी सिर्फ वो बात जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के अंडर हो उसमें है। जब कोई अल्लाह रसूल के हुक्म के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है, तो उसको नहीं मान लेना कि हाँ हम मान गए। अब किसी मुल्क में गे मैरिजेस अलाउड हो जाती हैं, किसी मुल्क के अंदर वो कह रहे हैं कि हिजाब ही नहीं ले सकते, अब किसी मुल्क में, तो अब ये नहीं कि अब उन्होंने कह दिया हिजाब नहीं ले सकते तो सारे हिजाब उतार के फेंक दें, नहीं। बात फिर माननी वो वाली है जो अल्लाह रसूल के हुक्म के अंडर हो, और ऐसे मुल्क हैं जहां पे हिजाबों पे पाबंदी है, आप पार्लियामेंट में हिजाब नहीं पहन के जा सकती कोई औरत, तो उस जगह पे नहीं माननी। अगर बाकी जगहों पे जैसे वो आम अहकाम दे रहे हैं उसको आपको मानना है, वो कहते हैं आप इनकम टैक्स दें इतना, आपको मानना है, तो कहते हैं ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, ये इसकी शरायत है, तब आपको ये चीज मिलेगी, आप कहते हैं कि हाँ ये मैं शरायत पूरी करती हूं, आप उनके हुक्म मानते हैं। वरना हर कोई बंदा कहना शुरू कर दे मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता, तो उस मुल्क का हाल क्या होगा, उस जगह का क्या हाल होगा, मनमानियां ही करेंगे हर कोई। कोई कहेगा मैं इस वजह से नहीं मानता, कोई कहेगा मैं उस वजह से नहीं मानता, मुझे ये पसंद नहीं है, कोई कुछ कहेगा, क्या होगा उस मुल्क का हशर, जैसे हम अपने देख ही लें हमारे यहाँ जो हालात हैं। फइन तनाजा तुम फी शैइन, फिर अगर तनाजा हो जाए तुम में किसी चीज में भी, किसी चीज से, चाहे दीन में हो चाहे दुनिया की कोई बातों में हो जाए, फरुद्दूहू इलल्लाहि वर रसूल, तो क्या करो, फेर दो उसको अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। यानी जब जाहिर है इंसान इकट्ठे रहते हैं तो इख्तलाफ भी हो जाते हैं, ये करें नहीं करें, या एक बंदा कहता है ये चीज ठीक है, दूसरा कहता है ये ठीक नहीं है, अब फैसला कौन करेगा, फैसला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो, यानी कुरान की तरफ आओ, हदीस की तरफ आओ। इन कुन तुम तुमीनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम वाकई ईमान रखने वाले हो ना अल्लाह और आखिरत के दिन पर, तो तुम इन चीजों की तरफ आओ, कुरान से रुजू करो, हदीस में देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात आई थी तो आपने क्या किया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले के अंदर किसी ने ऐसा पूछा था तो आपने इसका क्या फैसला सुनाया था, चाहे कोई झगड़ा हो जाए, चाहे कोई हकदारों को हक देने का मामला आ जाए, कोई कह रहा है मेरा हक बनता है, दूसरा कहता है नहीं मेरा बनता है, कैसे फैसला करेंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है? और ये इस शर्त के साथ बताया गया, अगर वाकई तुम ईमान रखते ना, यानी तुम्हारा ईमान की के ऑथेंटिक होने का पता इससे चलता है कि तुम अपने तनाजों में कुरान और हदीस की तरफ आओ। फिर बेस क्या हुई, सोर्स क्या हुई बताएं, कुरान और हदीस। और कुछ लोग कहते हैं नहीं कुरान और हदीस काफी नहीं है, जब तक कि हम और चीजों को ना बीच में ले आए, जबकि कि यहाँ पे किसी और चीज को नहीं लाया गया, कुरान और हदीस। इन कुन तुम तो मीनू ना बिल्लाही वल यौम आखरत के दिन पे और अल्लाह पे तुम्हारा ईमान अगर है ना वाकई, तुम कहते हो ना तुम ईमान वाले हो, तुम अपने आप को ईमानदार समझते हो ना, तो फिर तुम्हें किस तरफ देखना होता है जब भी कोई तनाजे खड़े हो जाए। अब शौहर कहता है मेरा ये हक है, बीवी कहती है नहीं मेरा हक है, तो फिर कहां से जाके फैसला कराएंगे, यहां से। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला, तो ये बेहतर भी है और ज्यादा अच्छा भी है नतीजे के एतबार से, नतीजा इसी का बेहतरीन निकलेगा कि अल्लाह रसूल की बात को मान लिया जाए और उसके थ्रू अपने मसलों को हल किया जाए। आप अपने बच्चों के दरमियान कोई फैसले करना चाहते हैं, कोई इख्तलाफ हो गया है, आप अपनी जॉब पे कोई चीजों का झगड़ा हो गया उसमें करना चाहते हैं, आपने कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करना, इसको बेस बनाना है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने इन आयात की।
انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا